यूनिट सेकेंड पाठ आठ प्रबंधन में नियंत्रण कंट्रोल इन मैनेजमेंट सलाहकार बोर्ड आंतरिक तथा बाह्य नियंत्रण मानवीय प्रबंधन एवं व्यवस्था की आवश्यकता होती है कि उसमें स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता और नियंत्रण रखा जाए, तभी शिक्षा की क्रिया से शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। विद्यालय के प्रबंधन में नियंत्रण साधारणतः बाह्य एवं आंतरिक होता है। आंतरिक नियंत्रण को प्राचार्य द्वारा किया जाता है और दिशा निर्देशन भी करना होता है, जबकि बाह्य नियंत्रण जिला राज्य तथा राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर कुछ संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिनका मुख्य कार्य शिक्षा प्रबंधन का नियंत्रण करना है। प्रबंधन में नियंत्रण का अर्थ मीनिंग ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट शिक्षा की पुनर्रचना के कार्यक्रमों के संपादन और उनके विकास हेतु शिक्षा संस्थाओं को विविध प्रकार की क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। शैक्षिक प्रशासन का तंत्र अधिक व्यापक होता है, उसमें विरोधी क्रियाओं का भी संपादन किया जाता है तथा विविध भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है। इसके लिए प्राचार्य तथा अधिकारियों को स्वतंत्रता होती है और उन पर नियंत्रण भी करना होता है, तभी शैक्षिक क्रियाओं का संपादन समुचित रूप से किया जा सकता है। इस तरह तात्पर्य यह है कि शिक्षा की विविध क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें संसद शैक्षिक प्रारूप को अनुमोदित करती है और उनका संपादन विभिन्न स्तर के अधिकारियों तथा प्राचार्य द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा राज्य का विषय है, परंतु केंद्र की भूमिका नीति निर्धारण में रहती है। जैसे भारतीय संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए है, राज्य और केंद्र को इस प्रावधान को क्रियान्वयन करने के लिए समुचित व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर करने का उत्तरदायित्व होता है। इसमें नागरिकों का सहयोग भी अपेक्षित है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का नियंत्रण अनेक संस्थाओं तथा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, स्थानीय संस्थाएं तथा व्यक्तिगत अभिक्रमकों को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी समन्वित रूप से भारत की शिक्षा प्रणाली का नियंत्रण करते हैं। प्रबंधन के नियंत्रण में केंद्र सरकार की भूमिका रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंट्रोल मैनेजमेंट। केंद्र में शिक्षा विभाग का आधिकारिक भारत सलाहकार सरकार का शिक्षा मंत्री होता है, जिसे मानव संसाधन भी कहते हैं। इसका उत्तरदायित्व होता है कि वह भारत की शिक्षा की सामान्य नीति का निर्धारण करे। शिक्षा के संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर संसद में उसे देना होता है। उसका मुख्य कार्य होता है कि वह सभी राज्यों में एक समान शिक्षा का स्वरूप विकसित करे और सभी राज्य प्रभावशाली ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करें। उसकी सहायता के लिए उप शिक्षा मंत्री भी होता है और सलाहकार समिति होती है और प्रशासनिक अधिकारी भी शिक्षा मंत्रालय में नियुक्त होते हैं। शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए भारत सरकार का एक उचित सचिव भी होता है, जो शिक्षा की नीतियों का प्रशासन करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य होता है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करे और उसके प्रति व्यक्तियों में सही दृष्टिकोण का विकास करे, जिससे शिक्षा द्वारा ऐसे नागरिकों को तैयार किया जा सके जो राष्ट्र में अपना सकारात्मक योगदान कर सकें और अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी सहायता के लिए और देश की शिक्षा के प्रबंधन को नियंत्रण करने के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की है। प्रबंधन नियंत्रण की मुख्य सलाहकार बोर्ड तथा परिषद चीफ एडवाइजरी बॉडीज फॉर कंट्रोल मैनेजमेंट। एक सफल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी समितियों का गठन किया जाए जो शिक्षा मंत्रालय को समय समय पर अपनी सलाह देते रहें, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार और विकास किया जाता रहे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड तथा परिषदें निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा की केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE। दूसरा, भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। तीसरा, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। चौथा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC। पांचवा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। छठवा, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सातवां, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। आठवां, राष्ट्रीय व्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन टीचर एजुकेशन। इनका बोर्ड एवं परिषद का शिक्षा के नियंत्रण में भूमिकाओं का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है। पहला, शिक्षा का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CAPE। इस बोर्ड की स्थापना सन 1921 में की गई थी और इसने अपना कार्य 1935 में आरंभ किया। यह शिक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी बैठकें प्रतिवर्ष हुआ करती हैं, जिसमें समस्त भारत से संबंधित शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाता है और संपूर्ण भारत के शैक्षिक कार्यक्रमों का आकलन करती है। इस बोर्ड की बैठक का अध्यक्ष भारत का शिक्षा मंत्री होता है, जिसके अंतर्गत राज्यों के शिक्षा मंत्री सदस्य होते हैं। इन बैठकों में भारत सरकार अपने विशेषज्ञों को भी सम्मिलित करती है, जिन्हें योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लिया जाता है। इस बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा परिषदों यानी कि विशेषज्ञों तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को सम्मिलित करने से संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व होता है। इस बोर्ड की बैठक में शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रकरणों की चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं, जो देश की शिक्षा और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस बैठक के निर्णयों को जानने के लिए देश विदेश के पत्रकार तथा प्रकाशक भी आते हैं। इससे संबंधित एक शिक्षा पत्रिका भी प्रकाशित होती है, जिसमें उसके निर्णयों को संपूर्ण देश में प्रसारित किया जाता है। यह संस्था का एक उत्तम पुस्तकालय का भी अनुरक्षण करती है। इस प्रकार से यह बोर्ड भारत की समस्त शिक्षा प्रबंधन का नियंत्रण करती है। दूसरा, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। इस परिषद का कार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करना है। यह परिषद संविधान के शिक्षा के निःशुल्क प्रावधान तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों के कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और प्रगति के लिए दिशा निर्देशन करती है। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से तैयार करती है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक, वित्तीय तथा शिक्षण विज्ञान संबंधी समस्याओं का विवरण तैयार करती है और उनके लिए समाधान प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र में सर्वेक्षण संबंधी शोध कार्यों को बढ़ावा देती है। यह परिषद प्राथमिक शिक्षा परिषद संबंधी सुझाव तथा निर्देशन संबंधी साहित्य को राज्य के शिक्षा विभागों को भेजती है। तीसरा, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। यह परिषद संपूर्ण भारत के माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद आयोजनों तथा विस्तार की क्रियाओं का भी आकलन करती है। यह केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर की समीक्षा करती है। माध्यमिक शिक्षा संबंधी विभिन्न राज्यों की समस्याओं, संबंधों, प्रदत्तों का संकलन करती है और इन समस्याओं के लिए शोध कार्य का सुझाव देती है। इस परिषद के अंतर्गत केंद्र और राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए राज्य प्रशिक्षण विद्यालय तथा आंतरिक विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रशासन हेतु तकनीकी शिक्षा बोर्ड भी सम्मिलित किए जाते हैं। यह अखिल भारतीय राज्य स्तर पर नई प्रणाली के निर्णय करती है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, निर्देशन तथा मूल्यांकन आदि का प्रारूप भी विकसित करती है। सभी राज्य निर्णयों का संपादन करने के लिए बाध्य होते हैं। इन निर्णयों की दृष्टि से राज्य अपने कार्यक्रमों को प्रारूप विकसित करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर वे अपने राज्य के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। राज्यों को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। चौथा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। यह उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए इसका महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान उत्तरदायित्व है। यह सभी विश्वविद्यालयों के स्तरों पर कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है और विश्वविद्यालयों के विकास के लिए सुझाव तथा अनुदान देती है। यह विश्वविद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष तथा सचिव होता है और इसके सदस्य भी होते हैं। यह विश्वविद्यालयों को निरीक्षण करते हैं और उनकी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को देखकर अपनी आख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उन्हें अनुदान देने की संतुष्टि भी करते हैं। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में एक आंतरिक विश्वविद्यालय बोर्ड की भी स्थापना की गई है, जिसका कार्य विद्यालयों की उपाधियों की समानता और उनकी मान्यता देने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्यों में समानता लाने का भी प्रयास करती है, जिससे भारत के सभी विश्वविद्यालयों का स्तर समान हो। पांचवा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इस बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई। इस बोर्ड में चेयरमैन तथा 12 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य शिक्षा की आवश्यकताओं एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है और उनकी पूर्ति के लिए समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना जगह जगह पर करती है। यहाँ पर बोर्ड उनकी आवश्यकता महसूस करता है और उनके लिए अनुदान की भी व्यवस्था करता है। यह बोर्ड समाज सेवी संस्थाओं के कार्यों में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, जैसे सेवारत महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना, तो बाधित एवं अपंग छात्रों की भी सहायता करना, परंतु अब बाधितों की शिक्षा को समाज कल्याण के बजाय शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया है। इसलिए अब यह उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग का हो गया है, जिसे विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। छठवां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, भारत सरकार ने इस परिषद की स्थापना इसलिए की है कि भारत में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था और उसके स्तर की समीक्षा करे और उसके विकास हेतु सुझाव तथा प्रयास करे। इस परिषद के अंतर्गत सुविधा के लिए विशिष्ट तकनीकों के आधार पर बोर्ड बना दिए गए हैं। प्रमुख बोर्ड इस प्रकार हैं: प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी शक्ति, इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी, ब रसायन प्रौद्योगिकी तथा रसायन तकनीकी, केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, स वस्त्र तकनीकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, द भवन निर्माण तथा क्षेत्रीय नियोजन आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, यह कलात्मक उपाय अप्लाइड आर्ट तथा र वाणिज्य एवं उद्योग प्रशासन कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन बोर्डों का मुख्य कार्य अपने अपने क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों संबंधी कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रमों विकास करना होता है। यह परीक्षा प्रणाली भी तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण हेतु व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इनके द्वारा विश्वविद्यालय के सभी स्तरों के लिए उपाधियों का प्रारूप भी तैयार किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी ज्ञान का विस्तार तथा प्रसार करती है और इसके लिए विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक संबंधी सुझाव भी देती है, तकनीकी शिक्षा के शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहन देती है और साथ साथ वित्तीय सहायता छात्रवृत्तियों के रूप में देती है। प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के लिए भी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह परिषद तकनीकी संस्थाओं के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उपकरणों के लिए भी अनुदान देती है। यह परिषद तकनीकी के छात्रों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजती है और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सातवां राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन 1961 के सितंबर माह में नई दिल्ली में हुई, जिसका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में विकास करना था। यह स्वायत्त संस्था के रूप में जाने जाते हैं। सन 1960 में इसका पंजीकरण किया। इसका मुख्य कार्य शिक्षा मंत्रालय को विद्यालयी विकास के लिए परामर्श देना है या शिक्षा के अंदर नई नीतियों को तैयार करना है और उन्हें लागू करने में भी सहायता करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय महाविद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए विभाग स्थापित किए गए, जिसके अंतर्गत 6 माह का प्रशिक्षण विशिष्ट शिक्षा के लिए देना आरम्भ किया है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है और सघन प्रशिक्षण के लिए 6 माह का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों में बीएड तथा एमएड पाठ्यक्रमों में विशिष्ट शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद इनमें विशिष्ट शिक्षा के विभाग भी खोले गए हैं। सेवारत अध्यापकों को भी राज्य तथा जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और शोध कार्यों में विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय कार्यक्रम 1992 तथा राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद NCTE विशिष्ट शिक्षा के लिए समिति बनाई, जिसने इस दिशा में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के लिए सुझाव दिए और शिक्षा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण का प्रारूप विकसित किया। विशिष्ट शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु 4 क्षेत्रीय महाविद्यालयों में केंद्र स्थापित किए गए, जैसे अमर ज्योति ट्रस्ट नई दिल्ली, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान बंगलोर। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रखी गई, जिसमें प्रति वर्ष 100 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रारूप काफी व्यापक रखा गया है, जिसमें सभी प्रकार के बाधित मंदित तथा असमर्थी बालकों की शिक्षा हेतु विधि तथा प्रविधियों को सम्मिलित किया गया है। 8वां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ टीचर एजुकेशन, भारत सरकार द्वारा मई 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना इस धारणा से की गई कि यह अध्यापक शिक्षा संबंधी सभी पक्षों पर परामर्श देती रहेगी। इसकी वार्षिक बैठक मार्च 1976 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इस परिषद दोनों को मिलकर हुई। इस प्रकार एक बैठक मई 1976 को शिमला में और दूसरी नवंबर 1976 में मद्रास में हुई थी। बाद में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, उसमें एक समिति गठित की गई, जिसमें विशेषज्ञों ने मिलकर अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु सुधार एवं योजना प्रपत्र यानी कि एन अप्रोच पेपर तैयार किया था। इस प्रपत्र को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवक्ताओं तथा विशेषज्ञों की अनुमति हेतु भेजा गया। इसके बाद फरवरी 1977 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें समिति की योजना प्रपत्र रूप में तैयार करने का अधिकार दे दिया था। इसमें अध्यापक शिक्षा में एक नया क्षेत्र सुझाया, समुदाय के अनुरूप कार्य प्रणाली, वर्किंग विद कम्युनिटी। इस प्रत्यय का विवेचन इस प्रपत्र में किया गया है। इस प्रपत्र के अंतिम प्रारूप में अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर सुझाव दिए गए हैं। पहला, विशिष्ट संस्कृतियाँ। दूसरा, अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। तीसरा, स्तर अनुसार उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का प्रारूप। चौथा, अध्यापक शिक्षा हेतु शिक्षण विधियाँ। पांचवा, मूल्यांकन प्रक्रिया। छठवां, अध्यापकों तथा प्रवक्ताओं हेतु सतत शिक्षा। सातवां, अनौपचारिक शिक्षा हेतु अभिविन्यास प्रशिक्षण। तथा आठवां, प्रशासन का स्वरूप। प्रबंधन नियंत्रण हेतु राज्य संस्थाएं, स्टेट बॉडीज फॉर कंट्रोल मैनेजमेंट। भारत में शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन का नियंत्रण राज्य का उत्तरदायित्व तो होता है। इसके लिए राज्य स्तर पर संस्थाओं की स्थापना की गई है, जो शिक्षा के नियंत्रण में अपनी विशिष्ट भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं। प्रमुख संस्थाएं राज्य स्तर पर इस प्रकार हैं। पहला, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। दूसरा, राज्य शिक्षा तकनीकी संस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, SIET। तीसरा, राज्य स्रोत केंद्र, स्टेट रिसोर्स सेंटर, SRC। चौथा, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, IASE। पांचवा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। छठवा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, DIET, डाइट। सातवा, जिला स्रोत इकाइयां, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। तथा आठवा, ब्लॉक स्ट्रेस स्रोत इकाइयां, ब्लॉक रिसोर्स यूनिट। राज्य स्तरीय इन संस्थाओं का विवरण राज्य स्तर के प्रशासन अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। यह संस्थाएं राज्य स्तर की शिक्षा का नियंत्रण करती हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राज्य स्तर पर शिक्षा नियंत्रण और प्रशासन हेतु निदेशालय की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्य राजकीय शिक्षा का प्रशासन करना और राजकीय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त निदेशालय राज्य सरकार को शिक्षा के संबंध में समय समय पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं और शिक्षा नीतियों और राज्य की प्रगति के संबंध में सूचित करती है। निदेशालय का उच्च अधिकारी निदेशक होता है। वह राज्य शिक्षा मंत्री का एक विशेषज्ञ सलाहकार भी माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में निदेशक को सबसे उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य शिक्षा के प्रशासन की जवाबदेही निदेशक की होती है। राज्य के अंतर्गत संचालित राजकीय और अराजकीय स्कूलों तथा महाविद्यालयों के शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना और उनका नियंत्रण करना निदेशक का ही उत्तरदायित्व होता है। अतः यह कह सकते हैं कि संपूर्ण राज्य की शिक्षा के स्तर को निदेशक को ही देखना होता है, इसलिए उसकी सहायता के लिए कार्य परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी राज्य सरकार ने की है। इसमें शैक्षिक समितियों को भी बनाया गया है। राज्य व्यवस्था के संचालन एवं नियंत्रण हेतु अपने उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों को उप शिक्षा निदेशक, सहायक शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो अपने क्षेत्र अथवा इकाई के अंतर्गत निदेशक के उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हैं और उसकी प्रगति एवं समस्याओं में शिक्षा निदेशक को अवगत करते रहते हैं। प्रबंधन में नियंत्रण का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट। शिक्षा पर किसका कितना नियंत्रण हो, यह एक अत्यंत ही विवादग्रस्त विषय है, सदियों से रहा है। प्रारंभ में अधिकांश देशों में शिक्षा पर धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण रहा तथा शिक्षा और धर्म अमित्र अंग के रूप में कार्य करते हैं। भारत में प्राचीन काल में जहां गुरुकुलों, कम तबों या मंदिर के नियंत्रण में शिक्षा रही, वहाँ इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में शिक्षा पर चर्च के नियंत्रण में रही। शिक्षा के महत्व और प्रभाव को देखते हुए धीमे धीमे शासन हस्तक्षेप करने लगा। वस्तुतः धार्मिक संस्थाएं और राज्य शिक्षा के नियंत्रण को लेकर काफी समय तक संघर्षरत रहे। धीरे धीरे चर्च या मंदिरों का प्रभाव कम होता गया तथा राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण बढ़ता चला गया। आज संसार के अधिकांश देशों में शिक्षा का नियंत्रण राज्य का है। यह बात भी जानना आवश्यक है कि हर क्षेत्र, हर एक देश की संस्कृति, इतिहास तथा परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतः शिक्षा के नियंत्रण का स्वरूप भी भिन्न भिन्न प्रकार को देखने में मिलता है। समाजवादी देशों में यथा रूस तथा चीन में केंद्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का शिक्षा पर नियंत्रण है। वहाँ अमेरिका, भारत आदि जनतांत्रिक देशों में जनसत्ता का नियंत्रण है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में है, अतः केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा पर नियंत्रण रखती हैं, शिक्षा संबंधी नीति तय करती हैं तथा कानून बनाती हैं, आयोग तथा शिक्षा समितियों का गठन करती है। शिक्षा की नीति पर दबाव समूहों यानी कि प्रेशर ग्रुप का भी प्रभाव पड़ता है। ये दबाव समूह प्रत्येक समाज, देश व संगठन में पाए जाते हैं। इन दबाव समूहों में राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, शिक्षक संगठन, अभिभावक समूह, विद्यार्थी संगठन, धार्मिक संगठन, सार्वजनिक शिक्षा संगठन, औद्योगिक संगठन आदि होते हैं। इन दबाव समूहों का प्रभाव एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। इसके लिए वहाँ की परंपराएं और सामाजिक प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। भारत में राजनीतिज्ञों का प्रभाव शिक्षा पर सर्वाधिक देखा जा सकता है। यहाँ शिक्षा के बारे में सभी की रुचि देखी जा सकती है। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति आदि। इन दबाव समूहों में शिक्षा की अनेक ज्वलंत समस्याओं पर विचार होते हैं, परंतु अंतिम निर्णय संसद लेती है और उसमें भी सत्ता पक्ष की ही बात मान्य होती है। स्थिति तो यहाँ तक होती है कि यहाँ शिक्षाविदों, शिक्षा संगठनों, उप कुलपतियों और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की बात भी अमान्य कर दी जाती है। अतः शिक्षा नीति बजाय शिक्षाविदों के राजनीतिज्ञों द्वारा निर्देशित होती है। अनेक अच्छी अच्छी संस्तुतियां बिना विचारे रह जाती हैं। यही कारण है कि शिक्षा आयोग की भी अनेक सिफारिशें मात्र सिफारिशें ही बनकर रह गई हैं। उन्हें पुस्तकालयों में रख दिया जाता है। शिक्षक किसी राष्ट्र की शिक्षा के स्वरूप के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। उदाहरण, इंग्लैंड के शिक्षक परिषद के अध्यक्ष ने 1949 में कहा, हमें उद्योगों के लिए, नागरिकता के लिए, यहाँ तक कि आंतरिक राज्य के लिए भी शिक्षा नहीं चाहिए। हमें बालकों के लिए शिक्षा चाहिए ताकि वे समग्र जीवन जी सके तथा अन्य लोगों की उपयोगी सेवा कर सके। वी डू नॉट वॉन्ट एजुकेशन फॉर इंडस्ट्री, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप और इवन एजुकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंटरनल स्टेट। वी वॉन्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन सो दैट दे कैन लीव अ फुल लाइफ एंड रेंडर यूजफुल सर्विसेज फॉर अदर्स। ब्रिटेन की शिक्षा पर आज भी इस कथन का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन की शिक्षा परिषद को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दबाव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन व नियंत्रण का साधन मानी जाती है। अतः दबाव समूह अपने हित में शिक्षा की नीतियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां सीनेट के सदस्यों को शिक्षा की आधारभूत नीतियों को निश्चित करने व प्रभावित करने का सर्वाधिक अधिकार है, वहीं सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी को यह मुख्य अधिकार है। भारत में भी संसद तथा विधानसभा शिक्षा नीतियों को निश्चित करने की प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रबंधन के नियंत्रण में दबाव समूहों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस और प्रेशर ग्रुप इन कंट्रोल ग्रुप। इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक देश में अनेक दबाव समूह अपने अपने हित में शिक्षा की नीतियों को प्रभावित करने में सक्रिय रहते हैं। दबाव समूह अनेक राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, व्यवसायियों, संगठनों, शिक्षक व विद्यार्थी, धार्मिक संगठनों, प्रशासकों, अभिभावकों, उद्योग समूहों आदि के होते हैं तथा अपने अपने हित में केंद्र व राज्य की राजधानियों में नीतियाँ तथा तक करने के लिए सक्रिय रहते हैं। जैसा कि हॉयल लिखते हैं, राज्य तथा केंद्र की राजधानियों में अपने अपने हितों के संवर्धन हेतु अनेक अभिकरण सक्रिय रहते हैं। समस्याएं अनेक उपयुक्त प्रचार अभिकरणों को जन्म देती हैं। सेवरल एजेंसीज वर्क फॉर देयर इंटरेस्ट इन स्टेट एंड नेशनल कैपिटल। करंट प्रॉब्लम्स ब्रिंग अप्रोप्रिएट प्रोपेगेंडा एजेंसीज इनटू एग्जिस्टेंस। शिक्षा संबंधी नीतियों के अनुकूल प्रभाव लाने के लिए तथा प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए दबाव समूहों का जन्म होता है। इन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है। इन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला रुचि समूह तथा दूसरा दबाव समूह। रुचि समूह ऐसे व्यक्ति समुदाय को कहते हैं जिसे अपने समान लक्ष्यों का पूर्ण बोध से तथा कार्य निष्पत्ति में जो एक दूसरे पर आश्रित हों। इस संदर्भ में एमटी जॉन्स इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन के लिखे गए लेख में लिखते हैं कि अनेक क्षेत्रों के अध्ययन इस तथ्य को उजागर करते हैं कि व्यक्ति विद्यालयों के कार्यों पर नियंत्रण के लिए राजनैतिक साधनों का आश्रय लेने का प्रयत्न करते हैं। कोगन का तो यह तक मानना है कि शिक्षा स्वभाव से ही राजनीति है। इस प्रकार राजनीतिज्ञों तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका शिक्षा की नीतियों को प्रभावित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत के लिए तो यह निष्कर्ष सर्वथा सही है। राजनीतिक प्रभाव न केवल शिक्षा की नीतियों वरन सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जब अनेक समूह अपने अपने हितों के कारण मिलकर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब एक परस्पर साझेदारी की भूमिका तय करनी होती है और एक को एलिशन संबित बन जाता है तथा शिक्षा की नीतियों को प्रभावित करने में अधिक सक्षम होता है। जब यही समूह अपने हित में निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रचार, संपर्क, दबाव आदि का प्रयोग करने लग जाता है तो लॉबी कहलाता है। प्रायः दबाव समूहों में तीन प्रकार के प्रभाव देखने में आते हैं, पहला व्यक्तिक, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा राजनैतिक। व्यक्तिक हित व्यक्ति की स्वायत्तता, परिस्थिति, पारितोषिक आदि के साथ जुड़े होते हैं, जो व्यक्ति को पहल करने के लिए अग्रसर करते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी दबाव समूह का सदस्य बन जाता है। व्यावसायिक हितों के अंतर्गत शिक्षा के संबंध में पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संरचना आदि में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। राजनीतिक हित के अंतर्गत पार्टी की राजनीतिक नीति एक प्रमुख कारण हो सकती है। आज समाज अपने स्वयं हितों के लिए क्रियाशील है। उपयुक्त तीन श्रेणियों में अनेक दबाव समूहों में नाम गिनाए जा सकते हैं। इन दबाव समूहों में सर्वाधिक प्रभावी समूह राजनीतिज्ञों का होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत के परिप्रेक्ष्य में दबाव समूहों की सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की भूमिका देखने में आती है। केंद्रीय स्तर पर संसद व राज्य स्तर पर विधानसभा की मुख्य भूमिका है। संसद व विधायक शिक्षा संबंधी नीतियों को विचार विमर्श के बाद तय करते हैं, परंतु शिक्षा संबंधी नीति तय करने में पहले विभिन्न शिक्षक संगठन भावी नीति के गुण और दोषों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर जनमत तैयार करने में योग देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर विरोध भी करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को तय करने में अनेक शिक्षक संगठनों की सकारात्मक भूमिका रही है। वस्तुतः प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षक संगठन एक महत्वपूर्ण दबाव समूह है। हमारे देश में भी अनेक शिक्षक संगठन विविध शिक्षा स्तरों पर सक्रिय हैं, परंतु प्रायः इनकी शक्ति वेतन, महंगाई बढ़वाने में व्यय होती है। श्रेयस्कर हो कि ये समूह राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी अपने प्रभाव का उपयोग करें। स्थानीय सांसद, विधायक तथा प्रधान अपने राजनीतिक वर्चस्व के कारण विद्यालय के संगठन व संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप करते देखे गए हैं, जिनमें स्थानांतरण एवं नियुक्तियां प्रमुख हैं। उचित यह हो कि ये विद्यालय के भौतिक व शैक्षिक विकास में सार्थक भूमिका निभाकर योग दें। इनकी सकारात्मक भूमिका से न केवल विद्यालय वरन समग्र क्षेत्र का विकास होगा। स्थानीय शिक्षक संगठन, छात्र संगठन, अभिभावक संगठन विद्यालय के शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास में निश्चित रूप से योग दे सकते हैं। प्रधान अध्यापकों को चाहिए कि वे उनसे संपर्क रखते हुए उनकी सकारात्मक भूमिका के लिए प्रयत्नशील रहें। वस्तुतः समुचित भूमिका के लिए दबाव समूहों पर एक सीमा तक नियंत्रण भी आवश्यक है। किसी भी दबाव समूह को विद्यालय के शैक्षिक पर्यावरण को दूषित करने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में मार्फट तथा टेलर के विचार बहुत स्पष्ट हैं कि इन समूहों को किन किन क्षेत्रों में अपनी भूमिका निर्वाह करनी चाहिए ताकि उनको सकारात्मक योग मिल सके। कुछ देशों में दबाव समूहों को सक्रिय नहीं होने दिया जाता अथवा इनकी क्रियाएं इतनी सीमित कर दी जाती हैं कि शैक्षिक कार्यक्रमों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ अन्य देशों में दबाव समूहों पर जब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, जब तक कि वे विचारों को प्रचारित करते हैं तथा शैक्षिक कार्यकलापों को वैधानिक तरीकों से प्रभावित करते हैं। इन सर्टेन कंट्रीज प्रेशर ग्रुप्स आइदर आर नॉट परमिटेड टू ऑपरेट आर सो लिटिल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इन अदर्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस सो लॉन्ग एज दे डील विद आइडियल यूज लेजिटिमेट मींस इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस एजुकेशनल प्रोग्राम्स। प्रबंधन में नियंत्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट। शिक्षा पर नियंत्रण की समस्या यह है कि उनका कितना नियंत्रण हो। कोई भी शैक्षिक संगठन अपनी अनुदेशी आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा ही विकसित होता है। वस्तुतः शैक्षिक प्रशासन अनुदेशी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होता है, जिसमें शिक्षकों तथा प्रशासन के मध्य परस्पर सहयोग परम आवश्यक है। अतः प्रशासन को निरंतर अनुदेशनों का संचालन, उनकी गुणवत्ता, प्रगति, परीक्षण संबंधी अनुसंधान आदि विषयों के बारे में शिक्षकों का वांछित सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज के शैक्षिक प्रशासन का एक अन्य लक्ष्य शिक्षा की नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। ये नीतियाँ केंद्र या राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं तथा शिक्षा विभाग उन्हें लागू करता है। योजना ठीक प्रकार से बने, इसकी क्रियान्विति ठीक प्रकार से हो तथा साथ ही कम से कम व्यय में अधिकाधिक दक्षता प्राप्त हो, पुनः नीति निर्माताओं तथा विद्यालय के मध्य परस्पर समन्वय हो, विद्यालय उन लक्ष्यों और नीतियों को लागू करे और उच्च बाह्य अधिकृतियां विद्यालय को आवश्यक सहयोग दें, तभी कोई योजना सफलतापूर्वक लागू की जाती है। इस प्रकार किसी भी शैक्षिक संस्थान की सफलता के लिए मुख्यतया आंतरिक व बाह्य दोनों ही स्तरों के योगदान की आवश्यकता होती है। अतः आंतरिक स्तर का अर्थ विद्यालय के आंतरिक प्रशासन से है, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, समय चक्र आदि नीति क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं, तथा बाह्य प्रशासन से अभिप्राय उन बाह्य अभिकरणों से है जो समग्र शिक्षा प्रणाली सहित स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करते हैं, तथा राज्य स्तर पर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, शिक्षा बोर्ड, शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अभिक्रमण, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग NCERT, पार्लियामेंट, राज्यसभा, राजनीतिक दल आदि का योगदान होता है। शिक्षा पर नियंत्रण को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, पहला आंतरिक नियंत्रण यानी कि इंटरनल कंट्रोल तथा दूसरा बाह्य नियंत्रण यानी कि एक्सटर्नल कंट्रोल। पहला आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल, इसके अंतर्गत प्रबंधक या प्रधानाध्यापक के नियंत्रण होते हैं, जिनमें दैनिक कार्यक्रमों से संबंधित तथा विद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित नियंत्रण होते हैं। उसके अंतर्गत दोनों प्रकार के व्यक्ति, शिक्षण से संबंध रखने वाले तथा संबंध न रखने वाले आते हैं। विद्यालय में मुख्य कार्य हैं समय तालिका निर्माण, पाठ्य या पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों का संचालन, विद्यालय स्वास्थ्य का निरीक्षण, खेल कूद, उत्सव आदि का आयोजन आदि सभी कार्य सीधे विद्यालय प्रधान के प्रशासन में होते हैं, जिन्हें प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यालय, अभिभावक आदि के सहयोग से पूरा किया जाता है। जनतांत्रिक प्रशासन परस्पर मधुर संबंधी, परस्पर विश्वास, सहयोग तथा स्वतंत्रता के आधार पर चलता है। अतः प्रशासक के लिए विद्यालयी कार्यकलापों में इन सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता होती है। जनतांत्रिक मूल्यों में प्रत्येक शिक्षक या कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान तथा अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक को पर्याप्त स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वह अपने दायित्वों को पूर्ति कर सके, अपने साहस तथा कार्य कुशलता का परिचय दे सके तथा छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में योगदान दे सके। इस संदर्भ में आधुनिक अवधारणा यह है कि कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। हाँ, इतना अवश्य है कि यह देखना प्रशासक का कार्य है कि किसी स्थिति में नियंत्रण से बाहर न हो। आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रणात्मक कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि इसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विद्यालय या संस्थान के विकास के लिए क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। उसे यह आना चाहिए कि विभिन्न समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। स्थिति यह है कि अनेक प्रबंधक, सचिव तथा प्रशासनिक अधिकारी भी व्यवस्था संबंधी जानकारी को नहीं रखते। मुखर्जी के अनुसार प्रशासक के रूप में प्रधानाध्यापक को अधोलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, संस्था प्रबंधकों को प्रबंध व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, मानवीय संबंध कैसे ठीक रखे जा सकते हैं या ध्यान रखा जाए। तीसरा, विद्यार्थी के साथ बड़ी सावधानी से व्यवहार किया जाए, क्योंकि उसे अपना व्यवहार यह जानकर करना चाहिए कि वे उस अणु बम की तरह हैं जो सृजन व विध्वंस दोनों ही कर सकते हैं। यदि उनको उचित ढंग से नहीं समझा गया व उनकी युवा शक्ति का उचित मार्गांतरीकरण नहीं किया गया तो वह शक्ति सृजन के स्थान पर विध्वंस भी कर सकती है। दूसरा, बाह्य नियंत्रण एक्सटर्नल कंट्रोल। बाह्य नियंत्रण का अर्थ विद्यालय या संस्थान से परे अन्य अभिकरणों का विद्यालय या संस्थान पर नियंत्रण हो। विद्यालय में बाह्य नियंत्रण करने वाली प्रभावी अभिकरण अधोलिखित हो सकते हैं। पहला, सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार। दूसरा, शिक्षा संबंधी शिक्षा विभाग, राज्य बोर्ड तथा परिषद। तीसरा, समुदाय, स्थानीय समुदाय, शिक्षक अभिभावक संघ। चौथा, राजनीतिक दबाव समूह, स्थानीय विधायक अथवा संसद सदस्य। पांचवा, विविध संघ, राजनीतिक पार्टियां, स्थानीय नेतृत्व, शिक्षक संघ, विद्यार्थी संघ। छठवां, अन्य पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें। सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट मशीनरी। सरकार सर्वाधिक शक्तिशाली नियंत्रणकारी अभिकरण है। यह बात न केवल हमारे देश के लिए वरन सभी देशों के लिए उतनी ही सत्य है जितनी कि समाजवादी देश इस संबंध में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी करते हैं। ब्रूबेकर के अनुसार विद्यालय कम्युनिस्ट प्रसार के लिए युद्ध क्षेत्र है, जहां शिक्षक रूपी योद्धाओं के माध्यम से विद्यार्थी रूपी दुश्मन पर उनमें साम्यवाद के बीज बोकर विजय श्री प्राप्त की जाती है। इस प्रकार राज्य शिक्षा का सबसे प्रभावशाली नियंत्रक है। भारत जैसे जनतांत्रिक देशों में भी सरकारें शिक्षा पर नियंत्रण रखना चाहती ही हैं। आपातकालीन स्थिति में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी इस देश में शिक्षा प्रशासन की पूर्व संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन करके 1975 में शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया है। इस परिवर्तन से केंद्रीय सरकार का शिक्षा संबंध नियंत्रण कहीं अधिक हो गया है। यो पहले से भी शिक्षा संबंधी नीति भारतीय संसद ही निश्चित करती है। उदाहरण, देश में शिक्षा का स्वरूप 10+2+3 हो अथवा 8+4+4 हो, शिक्षा के विभिन्न आयोगों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही हुई है। पुनः शिक्षा मंत्रालय विभिन्न शैक्षिक केंद्रीय शैक्षिक अभिकरणों, परिषदों, बोर्डों के माध्यम से शिक्षा पर नियंत्रण बनाए रखता है। यही नहीं, केंद्रीय अनुदान द्वारा राज्य सरकारों को विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान के माध्यम से केंद्रीय नीति को लागू किया जाता है। उदाहरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा देश में प्राय सभी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण है। त्रिभाषा फार्मूला, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम सभी राज्यों में समान रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं। योजना आयोग भी शिक्षा पर विचार करता है तथा इस प्रकार शिक्षा संबंधी विकास कार्यों के लिए निर्देशन देता है। केंद्र विशेष तकनीकी विशिष्ट बालकों, संस्कृति विकास, शैक्षिक नेतृत्व, राष्ट्रभाषा विकास आदि अनेक संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से राज्यों की शिक्षा पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। यद्यपि राज्य को अपनी आवश्यकता तथा अपने विवेक से शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, परंतु उपयुक्त स्थिति के कारण वे केंद्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। स्वतंत्रता पूर्व तथा वर्तमान नियंत्रण स्थिति, ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा ब्रिटिश सरकार की नीति के अनुरूप होती थी, क्योंकि हमने चुनौती देने की बात नहीं सीखी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हमारे मन में ब्रिटिश शिक्षा नीति के प्रति शंका उत्पन्न होने लगी। यही कारण था कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीतियों का घोर विरोध किया गया। तिलक तथा गोखले ने इन नीतियों का प्रमुख रूप से विरोध किया। आज केंद्रीय सरकार की शिक्षा योजना या नीति आसानी से स्वीकार नहीं की जाती। त्रिभाषा फार्मूला अभी तक सभी राज्यों ने, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य ने स्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकार का नियंत्रण, स्टेट कंट्रोल, राज्य सरकार दूसरा अधिक शक्तिशाली नियंत्रक है। सच तो यह है कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य की शिक्षा के विकास के लिए आज भी पूरी तरह जिम्मेदार है। जो राज्य सरकार शिक्षा में अधिक रुचि रखती हैं, वह अधिक वित्तीय भार वहन करती हैं। उदाहरण, केरल, महाराष्ट्र या केंद्र शासित चंडीगढ़, दिल्ली आदि में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक शिक्षा का प्रसार संबंध राज्य सरकारों की शिक्षा में अधिक रुचि के परिणाम है। राज्य शिक्षा मंत्रालय या सचिवालय द्वारा राज्य की शिक्षा नीति निश्चित की जाती है। कौन सी शैक्षिक संरचना स्वीकार की जाए, कौन सी विशिष्ट आयोजन या आयाम शिक्षा में जोड़े जाएं, शिक्षा पर किसका नियंत्रण हो, यह शिक्षा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि देश में कहीं कहीं शिक्षा का पूरा सरकारीकरण है, तो कहीं सरकारी तथा निजी शिक्षण व्यवस्था दोनों ही शिक्षा व्यवस्था करते हैं। उदाहरण, राजस्थान में जहां माध्यमिक स्तर पर अधिकांश 96.5% शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण है, उत्तर प्रदेश में लगभग 100% शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण निजी संस्थाओं का है। शिक्षा विभाग का नियंत्रण, राज्य में शिक्षा में दक्षता लाने का कार्य शिक्षा निदेशक या जन शिक्षा निदेशक का होता है। वह राज्य की शिक्षा नीति के अनुरूप अपने अधीनस्थ अधिकारियों, उपनिदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय स्तर तक उस नीति के अनुरूप शिक्षा कार्यक्रम लागू करवाता है। राज्य शिक्षा बोर्ड या परिषद का नियंत्रण, राज्य शिक्षा पर एक और प्रभावकारी नियंत्रण शिक्षा बोर्ड द्वारा होता है। बोर्ड ही राज्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। यूं यह स्वायत्त अधिकार है, परंतु राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत अध्यक्ष व सचिव के कारण राज्य का उस पर नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बना ही रहता है। स्थानीय समुदाय का नियंत्रण, वस्तुतः स्थानीय समुदाय का शिक्षा पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा स्थानीय समुदाय की आवश्यकता तथा आकांक्षा की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो स्थानीय समुदाय ही लगभग पूरी तरह से शिक्षा पर नियंत्रण रखता है। यह नियंत्रण शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम आदि सभी पर लागू होता है। यही कारण है कि सामुदायिक विद्यालय, कम्युनिटी स्कूल्स का विकास वहाँ हो सका। भारत में स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ राज्य की स्वीकृति से विद्यालय खुलते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति भी राज्य सेवा के लिए होती है। अतः संयुक्त राज्य की स्थिति की कल्पना हम यहाँ नहीं कर सकते। गुजरात में अवश्य समुदाय की ओर से शिक्षा में काफी पहल व रुचि प्रदर्शित की गई है। व्यावसायिक संस्थान 1 पैसा प्रति रुपया शिक्षा का विकास के लिए एकत्रित करते हैं, परंतु राज्य सरकारों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। केवल कुछ शिक्षा में रुचि रखने वाले लोग अवश्य भवन आदि में सहयोग प्रदान करते हैं। शिक्षा में विकेंद्रीयकरण का प्रयोग बलवंत राय मेहता कमेटी की संतुष्टि पर अनेक राज्यों में लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की, पंचायत समितियों को सौंप दी गई। इस आशा से कि स्थानीय नेतृत्व स्थानीय सहयोग से शिक्षा व्यवस्था में योगदान दे सके, परंतु पंचायती राज प्रशासन में शिक्षक असंतुष्ट हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रधान सरपंच पंचों एवं समिति पदाधिकारियों के हस्तक्षेप से विद्यालय प्रशासन में ही कठिनाई पैदा नहीं होने लगी है, अपितु शिक्षा के गुणात्मक स्तर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। आंतरिक समुदाय का नियंत्रण शिक्षा अभिभावक संघ एवं महत्वपूर्ण दबाव समूह है जो विद्यालय विकास के लिए कार्य कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो यह बहुत ही प्रभावकारी है। सोवियत संघ में भी माता पिताओं को उनके बालकों की प्रगति का अवलोकन करने के लिए स्कूल में आमंत्रित किया जाता है, परंतु हमारे देश में स्थिति ठीक नहीं है। प्रायः अभिभावक शिक्षक सम्मेलन एक औपचारिक मात्र है जो विद्यार्थी प्रवेश तथा सत्र के मध्य में परीक्षा परिणाम के समय आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय विकास के लिए इनका योगदान नगण्य है। अन्य दबाव समूह का नियंत्रण स्थानीय विधायक तथा संसद सदस्य महत्वपूर्ण दबाव समूह का कार्य करते हैं। भारत की राजनीति में ये दबाव समूह शिक्षा प्रशासन में काफी हस्तक्षेप कर रहे हैं। परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय तथा विद्यालयों का पर्यावरण विषाक्त बन गया है। प्रवेश से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति में भी इनका हस्तक्षेप हो गया है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। यदि ये दबाव समूह विद्यालयों के विकास के लिए कार्य करें तो महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता है कि इन मालिकों जनप्रतिनिधियों को सही दिशा में शिक्षित किया जाए। शिक्षा संगठन भी महत्वपूर्ण दबाव समूह है। यदि वे प्रशासन व गुणात्मक शिक्षा के लिए कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, परंतु आपसी विवाद तथा अनेक क्षेत्रीय उप संगठनों के कारण इनकी शक्ति आपस में ही लड़ने के में व्यय होती है। केवल स्वयं के वेतनमानों के बढ़ाने में अवश्य इनकी रुचि है। ब्रिटिश राष्ट्रीय शिक्षा संगठन आज भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ब्रिटिश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई बात थोप नहीं सकती है। यहाँ शिक्षक संगठन ही है जो वहाँ की शिक्षा की स्थिति को ठीक किए हुए है। छात्र संगठन भी आज एक महत्वपूर्ण दबाव समूह है। देश में इनको दबाव को आज स्वीकार किया जा रहा है, परंतु गलत दबाव शिक्षा की गुणात्मकता में विपरीत प्रभाव डाल रहा है। आए दिन छात्र हड़तालें, परीक्षा बायकॉट से पाठ्यक्रमों की 2 वर्षीय अवधि 4 वर्ष की बन गई है। उचित तो यह होगा कि इनका प्रशिक्षण हो, इनकी बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, इनके साथ शटल कॉक की तरह व्यवहार नहीं किया जाए, नहीं तो ये शक्ति जो सर्जनकारी हो सकती है विस्फोटककारी भी हो सकती है। भारत के संदर्भ में नियंत्रण हमारे देश में प्रायः प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभागों में न केवल पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया है, वरन प्रत्येक विषय के शिक्षण कालांश की संख्या मूल्यांकन प्रणाली भी निश्चित कर दी है। इससे शिक्षकों की सृजनशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। ये स्थानीय अथवा बालकों की आवश्यकता अनुरूप पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन नहीं कर सकते। इससे विद्यालयों की स्वतंत्रता में भी बाधा होती है जो जनतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यदि हमें एक अच्छा शैक्षिक स्तर यानी कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्राप्त करना है तो हमें विद्यालयों तथा शिक्षकों को स्वतंत्रता देनी होगी। शिक्षकों द्वारा पहले स्वयं करने को बढ़ावा देना होगा ताकि वे अपनी सूझबूझ साहस तथा कार्यकुशलता का परिचय दे सके। अधिगम अभ्यास लर्निंग एक्सरसाइज पहला प्रबंधन नियंत्रण का अर्थ बताइए, अनुशासन के प्रकार बताइए और अनुशासनहीनता के कारण भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा अनुशासनहीनता के निवारण के उपाय बताइए। मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत की अनुशासनहीनता निवारण में भूमिका बताइए। तीसरा उत्तम विद्यालयी अनुशासन का अर्थ समझाइए, विद्यालय अनुशासन में प्राचार्य की भूमिका बताइए। चौथा शिक्षा नियंत्रण का अर्थ समझाइए, नियंत्रण करने वाले अभिक्रमकों का उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रबंधन नियंत्रण के प्रकार बताइए, आंतरिक नियंत्रण में प्राचार्य की भूमिका का विवरण दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहला प्रबंधन नियंत्रण का शाब्दिक अर्थ बताइए, दूसरा विद्यालय में अनुशासन की आवश्यकता बताइए, तीसरा अनुशासनहीनता के कारण बताइए, चौथा शिक्षा नियंत्रण का अर्थ समझाइए, पांचवा प्रबंधन नियंत्रण के प्रकार बताइए। सत्य असत्य प्रश्न ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पहला सामाजिक मूल्यों के अनुरूप आचरण को अनुशासन कहते हैं, सत्य या असत्य। दूसरा विद्यालयी नियमों के अनुसार व्यवहार को विद्यालयी अनुशासन कहते हैं, सत्य या असत्य। तीसरा प्रबंधन नियंत्रण के 2 प्रकार होते हैं, सत्य या असत्य। चौथा आंतरिक नियंत्रण में प्राचार्य की भूमिका अहम होती है, सत्य या असत्य। पांचवा बाह्य नियंत्रण में केंद्र तथा राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सत्य या असत्य। कुंजी पहले के लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए सत्य और पांचवें के लिए भी सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस पहला विद्यालयी कार्यकलापों के संचालन में रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा, मूल्यों तथा नियमानुसार आचरण को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, अनुशासन का वर्गीकरण रिक्त स्थान प्रकार से किया है। चौथा, प्राचार्य की भूमिका रिक्त स्थान नियंत्रण में अहम होती है। पांचवा, राज्य सरकार की भूमिका रिक्त स्थान नियंत्रण में अधिक होती है। कुंजी, पहला विद्यालयी अनुशासन, दूसरा अनुशासन, तीसरा तीन, चौथा आंतरिक, पांचवा बाह्य। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन। पहला, प्रबंधन नियंत्रण का अर्थ होता है अ, मूल्यों का अनुसरण, ब, नियमों का अनुपालन, स, व्यवहार का समाजीकरण, द, उपरोक्त सभी। दूसरा, अनुशासन का रूप है अ, दमनात्मक, ब, प्रभावात्मक, स, मुक्तयात्मक, द, उपरोक्त सभी। तीसरा, अनुशासनहीनता के निवारण का उपाय है अ, दंडात्मक आयाम, ब, सुधारात्मक आयाम, स, उदाहरणात्मक आयाम, द, उपरोक्त सभी। चौथा, प्रबंधन नियंत्रण का मुख्य सलाहकार बोर्ड है अ, केंद्रीय सलाहकार, ब, प्राथमिक शिक्षा परिषद, द, माध्यमिक शिक्षा परिषद, द, उपरोक्त सभी। पांचवा, प्रबंधन नियंत्रण की राज्य संस्था है अ, शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ब, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स, उपरोक्त दोनों ही, द, उपरोक्त कोई नहीं। कुंजी, पहले के लिए द, दूसरे के लिए द, तीसरे के लिए द, चौथे के लिए द और पांचवें के लिए स।